सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। पल सुनहरा साथ तेरे है, हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। गुलशन में छाई हरियाली तेरी कृपा से है खुशहाली, मधुबन में खुशबू तेरे दम से घर घर शांति प्रभु तुम्ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।
शांति। आज हमारे बीच डॉक्टर सतीश पाई जी आए हैं। आप बाबा के अनुभवी रतन बहुत सी विशेषता लिए हुए हैं। बाबा कहा करते थे, अगर कोई टीचर होता था तो बाबा कहा करते थे, डबल टीचर बनो। डॉक्टर होते थे, बाबा कहते थे, डबल डॉक्टर बनो। और यही विशेषता बाबा ने आपको वरदान में कहीं दे दी, बाबा को प्रत्यक्ष करने की। कैसे अपने अंदर, क्योंकि योग का अर्थ है मन को स्वस्थ, तन मन को स्वस्थ कैसे रखें, बाबा ने ये विशेषता दे दी। और इसी विशेषता से, वैसे आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, 28 वर्षों से ज्ञान में हैं, पिछले 18 वर्षों से तो आप यहाँ मधुबन में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफी रिसर्च आपने की है कैसे योग के द्वारा अपने हृदय को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। ऐसे बहुत से केसेस जिनको आपने मेडिटेशन के द्वारा ही स्वस्थ रहने की एक कला दी है, तो आज हमारे बीच हैं अपने अनुभव से कैसे हमारी स्थिति भी लाइट माइट हाउस बन सके, हम भी अपने तन मन को स्वस्थ रख हल्के शक्तिशाली बने। तो आज अपने अनुभवों का हमें भी रत्नों के द्वारा हमारी झोली भरेंगे। डॉक्टर सतीश भाई जी, एक बार हम सब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। स्वागत।
ओम शांति। मधुबन घर में इस वर्ष डिफरेंट ग्रुप्स को भट्टी करने का चांस मिला है, तो काफी सालों के बाद ऐसे मैं समझता हूँ फिर दोबारा से मधुबन में भट्टियां आयोजित की जा रही हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। बाबा की कर्म भूमि साकार, बाबा ने कैसे यहाँ रह करके फरिश्ता बने, तो हम सभी भी यहाँ पर क्या बनने के लिए आए? फरिश्ता बनने के लिए। तो आज आपसे इस विषय पर लाइट हाउस माइट हाउस बनना है ना? बनना है सभी को लाइट हाउस माइट हाउस। लाइट हाउस पता है क्या होता है? स्थूल में जो लाइट हाउस होता है ना, सागर में होता है, सागर के किनारे पर होता है, सागर में चट्टान के ऊपर बनाया जाता है, सागर के बीच में चट्टाने होती है ना, उसपे एक बहुत ऊंचा ऊपर बहुत अच्छा लाइट का सोर्स होता है। तो जहाज आते हैं, शिप्स आते हैं, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए कि आप यहाँ एक चट्टान है, इसे टकरा मत जाना, इधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, डायरेक्शन, ताकि लोगों को डायरेक्शन मिल सके। शिप के कैप्टन होते हैं जो उनको डायरेक्शन मिल जाती है, तो लाइट हाउस वो कार्य करता है। और माइट हाउस क्या करता है? सारे सिटी में, शहर में एक माइट हाउस होता है, एक पावर हाउस जानते हैं ना, जहां से सारे एरिया को बिजली जाती है, पावर हाउस होता है ना, तो सारे एरिया को बिजली जाती है, उसमें बिजली वहां से लाइनों के द्वारा घर घर में लाइन पहुंचती है, और उसके बाद वहां से घर में क्या क्या चलता है उससे, लाइट तो आती है, साथ साथ पंखे भी चलते हैं, फ्रिज भी चलता है, एसी भी चलता है, कूलर भी चलते हैं, और हीटर भी चलते हैं ना, नहीं चलते हीटर भी चलता है, नहीं चलता है ना, और बर्फ जमाने के इक्विपमेंट भी, रेफ्रिजरेशन का भी बताया ना, फ्रिज जैसे उसमें बर्फ भी जलती है, तो उससे आग भी निकलती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से उसी से बर्फ भी जमती है, और उससे ठंडा भी होता है कमरा, गर्म भी होता है ना, खाना भी बनाते हैं उसी से, है ना। तो तो माइट जो पावर हाउस है एक सारे पूरे शहर को क्या देता है, शक्ति देता है ना। तो ऐसा हम बाबा के ऐसे बच्चे बन जाएं कि हम भी ऐसे लाइट हाउस सबको रास्ता दिखाएं। रास्ता दिखाने वाले किसका रास्ता दिखाने वाले, किसका, अपने घर का और शांति धाम का और सुख धाम का है, या बाबा से मिलने का रास्ता दिखाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने वाले, और साथ साथ माइट हाउस, ताकि व्यक्ति जहां पर जिनको भी ऐसी कमजोरी है, किसी को गर्मी चाहिए, किसी को ठंडी चाहिए है ना, कोई बहुत गर्म दिमाग का उसको ठंडी चाहिए है ना, कोई बहुत ठंडे दिमाग का उसको जीने के लिए थोड़ी हल्की सी गर्मी चाहिए है ना, ताकि वो एक सही रास्ते पे चल सके। किसी को सहन शक्ति का, बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको बहुत थोड़ी सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, पहाड़ जैसी बात को रुई बनाने की शक्ति चाहिए ना, रुई राई बन जाए फिर रुई बन जाए, समेटने की शक्ति चाहिए, सहन सामना समाना सहयोग शक्ति चाहिए ना, हिम्मत की टांग चाहिए कि वो घर में बाबा के घर में आ सके ना? आना तो चाहते हैं बाबा के, बहुत मतलब ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाबा के घर में आना चाहते हैं, ज्ञान अच्छा लगता है किंतु हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत की टांग चाहिए तो वो कैसे मिलेगी उनको। तो आज इसी बात पर थोड़ा गहराई में जाते हुए, ज्ञान और योग की गहराई, ज्ञान की गहराई देखिए, हमें ज्ञान की गहराई में जाएंगे ना, ज्ञान ज्ञान है रोशनी है ना, ज्ञान रोशनी है ना, ज्ञान है लाइट और योग है माइट है ना, योग द्वारा माइट मिलती है और ज्ञान द्वारा लाइट मिलती है। अब ज्ञान जितना ज्ञान की गहराई हमारे अंदर होगी ना, उतनी लाइट ज्यादा हो जाएगी, लाइट हाउस उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उतना लाइट हाउस पावरफुल हो जाएगा, और योग की जितनी गहराई होगी उतना क्या हो जाएगा, माइट हाउस पावरफुल हो जाएगा, दूर तक हम दूर दूर तक हम क्या दे सकेंगे, करंट दे सकेंगे, बिजली दे सकेंगे ना, नहीं दूर दूर तक की आत्माओं को हम शक्तियां दे सकेंगे, वहां की आत्माएं वो फील करेंगी, उनके अंदर ऐसी शक्ति महसूस होगी उनको कि वो परख पाएंगी कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, यही सही यही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही बाबा है और एक ही रास्ता है, उनके मन में भी दुविधा है ना, इधर जाए कि इधर जाए, फिर दुविधा खत्म हो जाएगी, एक ही रास्ता है, एक ही बाबा एक ही रास्ता और एक ही यही करना है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे है ना। तो वो जो है हमें स्थिति कैसे बनेगी, तो इसलिए थोड़ी सी हमें जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते जाएंगे, ज्ञान की गहराई का अनुभव करते जाएंगे है ना, ज्ञान की महीनता में जाएंगे, उतना उतना क्या होगा, उतना उतना लाइट बढ़ेगी, आत्मा की लाइट है ना, लाइट हाउस बन जाए, उतना ज्यादा लाइट हाउस बनेंगे, और जितना जितना योग की लाइट बढ़ेगी, योग में योग की गहराई में जाएंगे, उतना उतना माइट बढ़ती जाएगी ना, है ना, बाप समान बनते जाएंगे, बाप सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा है, तो हमारी स्थिति भी बहुत ऊंची हो जाएगी। देखो लाइट हाउस अगर नीचे हो ना, बल्ब नीचे हो तो लाइट थोड़ी जगह में फैलेगी, लाइट ऊंची होती है ना तो दूर दूर तक फैल जाती है ना, तो ऐसे ही लाइट और माइट फैलाने के लिए हमको हमारी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। तो आज हम आपसे इसी बात पर थोड़ा सा, ज्ञान की गहराई क्या है और योग की गहराई क्या है, इस पर ही इसमें गहराई, इसमें आप ऑटोमेटिक लाइट हाउस माइट हाउस अपने आप आ जाएगा, और साथ साथ फिर इसको हम गहराई से ऐसे देखें, क्योंकि आज हमको खाली ज्ञान सुनाने की सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनने की आवश्यकता है ना, प्रैक्टिकल समस्याएं हमारे सामने है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने, समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत लंबी और ऊंची है, थोड़े समय में हम कैसे वो सब अचीव करें, इतनी सेवा भी बाकी है, अभी 100 में से 1% भी बने हैं क्या, 1% को भी सही मैसेज नहीं पहुंचा है, मतलब टीवी के द्वारा मैसेज पहुंच रहे हैं किंतु क्या वो आत्माओं को इतनी शक्ति नहीं आई ना अभी तक, तो है ना, अगर हम जयपुर में देखें कितने परसेंट आत्मा, 1% आत्मा बनी है, बाबा के बच्चे बने, 0.1% बने होंगे ना अभी, हजार में से पूरी पॉपुलेशन देखे तो 0 में 1000 में से 1 बना होगा है ना, तो अभी देखो तो कितना काम बाकी है ना, ताकि सबको सब बाबा बाबा करने लगे, दिल से कहें बाबा है ना, किसी धर्म जाति के हों, और हमसे साक्षात्कार होने शुरू हो जाए और हमको साक्षात्कार होने शुरू हो जाए किसके, आने वाली दुनिया के। तो मैं आज उन बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे आने वाले समय पर जब हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे तो कैसे आने वाले समय पर हम हमारे द्वारा साक्षात्कार होंगे और हम भी साक्षात्कार करते रहेंगे आने वाली नई दुनिया के। उन्हीं बातों पर हम जब गहराई में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बातें आएंगी। तो एक मिनट के लिए सभी बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बातें एकदम एकाग्र बुद्धि से सुनना समझेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा वैज्ञानिक विश्लेषण भी करते हुए, मतलब वैज्ञानिक की बात विज्ञान की बातें नहीं करेंगे किंतु वैज्ञानिक माना इसकी गहराई इसको समझते हुए, है ना, कि किस तरह से हमारे अंदर, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बाजा है ना, शरीर बाजा है ना, देह में रहते हुए बनना है कि देह छोड़ने के बाद बनना है, फरिश्ता देह में रहते बनना है, देह में छोड़ने के बाद बनना है, देह में रहते बनना है ना, कर्मातीत भी इसी में बनना है ना। तो कैसे हम शरीर में रहते हुए फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, है ना, और किस तरह से हम अपने सब चीजों को कंट्रोल, इसके पीछे क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, क्या मैकेनिज्म है इसका, वो हम गहराई समझे। चलिए एक मिनट इसके लिए मन बुद्धि को एकदम बस मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना। चलिए एक मिनट के लिए चले जाए। ओम शांति। हमें ये तो सभी को निश्चय है कि हम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है यहां पर है और यहां से भी 2.5 इंच अंदर है, यहां पर नहीं है, कहां पर है, यहां से 2.5 इंच अंदर है ना, और यहां से बीच वाला हिस्सा देखे तो यहां से 3 इंच नीचे है, जहां पे दोनों पॉइंट मिलते हैं ना ऐसे, वहां पर आत्मा का निवास स्थान है और आत्मा ड्राइवर है इस शरीर की, आत्मा ही शरीर को चलाती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही खाती है ना, ऐसे तो हम कहते हैं ना, ये बात हम कहते हैं कि आत्मा सब कुछ करती है ना, आज की मुरली में भी था ना ये बात, तो वो आत्मा यहां रह के कैसे सब कुछ करती है, क्या एनर्जी है आत्मा के पास जिससे आत्मा शरीर को चलाती है। जैसे आपने देखा होगा जो पानी गिरता है ना, जैसे भाखड़ा डैम है, भाखड़ा है ना, भाखड़ा सतलुज के ऊपर भाखड़ा डैम बना हुआ ना, तो भाखड़ा डैम का पानी ऊपर से गिराया जाता है ना, ऊपर से बहुत हाइट से गिराते हैं, अभी जो नर्मदा डैम बना है ना, नर्मदा में भी डैम बना ना, तो पानी कितना 300 मीटर से गिराते हैं पानी को। और पानी गिराने के बाद नीचे क्या होते हैं, अगर ऐसे ही पानी गिर जाए 300 मीटर से तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ बिजली बनेगी क्या? नहीं, नीचे टर्बाइन्स होते हैं, बड़े बड़े टर्बाइन्स होते हैं ना, टर्बाइन्स ऐसे घूम, तो वो जैसे पानी गिरता है टर्बाइन्स के ऊपर तो टर्बाइन्स घूमते हैं, और टर्बाइन्स घूमने से क्या होता है, पानी गिरा टर्बाइन्स घूमे उससे काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है ना, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, उसको बड़े बड़े डायनामोज उस इलेक्ट्रिसिटी को कैच करके डायनामोज में स्टोर कर लेते हैं, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी पहले क्या बनी, पानी गिरा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके फिर वो सब शहरों में वहां से सप्लाई की जाती है ना, नहीं। ऐसे ही जो आत्मा में स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्या एनर्जी है, आत्मा में 7 गुण है ना, 7 लाइट कहो, 7 एनर्जी कहो, निकलती रहती है हमेशा यहां से, ऐसे यूं निकलती रहती है हमेशा। आत्मा जैसे गर्भ में प्रवेश करती है तो लाइट निकलनी शुरू हो जाती है, 7 एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। ज्ञान, पहली एनर्जी कौन सी है, ज्ञान है ना, फिर पवित्रता है ना, पवित्रता, फिर शांति है ना, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां ना, ये सीक्वेंस है। इसकी मैं सीक्वेंस आपको बताऊं कैसे निकलती है ना, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, फिर स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी जहां हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है ना, यहां पर दोनों ब्रेन है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेब पेड़ से गिरा, पेड़ से टूटा तो कहां जाना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, तो लेफ्ट ब्रेन कहता है नीचे जाना चाहिए, और राइट ब्रेन क्या कहता है, पेड़ से टूटा तो ऊपर भी जा सकता है ना, मतलब कुछ क्रिएटिव, इमोशनल क्रिएटिविटी है ना, तो लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है और राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है, क्रिएटिविटी है ना। जैसे हम क्या बातें करते हैं, कई बार क्या करते हैं बातें, कभी चांद तारों में जाएं है ना, नहीं बच्चों को कहते हैं ना चांद तारों में, तुम्हारे लिए मम्मी मेरे को लेके आ दो ना, सामने वो तारा चमक रहा है ना, ला के दे दो ना, नहीं। दुनिया में तो आपस में तो लोग बोलते ही हैं कि तो चांद तारों की बातें करते हैं ना, तो लॉजिकल ब्रेन इस तरह से लॉजिक की बात करता है, और क्रिएटिव ब्रेन क्या कहता है, कुछ नई बातें, इमोशनल ब्रेन। जैसे अगर आदमी ये सोचता रहता कि आदमी ये उड़ रहा, आज आदमी उड़ता है ना, ये किसकी किसकी उपज है, कौन से ब्रेन की उपज है, आदमी उड़ सकता है क्या, कि तो उड़ता है ना, साथ में 20 किलो का बैग भी लेके उड़ता नहीं है। जयपुर से अगर इधर आना हो, ट्रेन नहीं हो तो प्लेन से आते हैं ना, नहीं आते, 20 किलो का बैग भी तो साथ में लेके आते हैं, नहीं उड़ के आते हैं, ऐसे आते हैं ना? उड़ के आते हैं ना, तो ये क्रिएटिविटी है ना, कोई चीज देखते हैं उससे क्रिएटिविटी पैदा होती है ना, ट्रेन से भी आते, ट्रेन भी कैसे बनी, एसी भी कैसे बना है ना, ये क्रिएटिविटी कहां से आई है ना, ये हमारे राइट ब्रेन से आई। तो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, हर चीज का सेंटर है ब्रेन में ना, स्पीच का सेंटर है, यहां हमारी मेमोरीज हैं, यहां हमारे इमोशंस, एटीट्यूड्स हैं, है ना, विजुअल सेंटर है, यहां आवाज का केंद्र है, यहां से राइट ब्रेन, जो लेफ्ट ब्रेन है राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी कंट्रोल करता है। इन दोनों ब्रेन का भी फिर ब्रेन है, जहां दोनों ब्रेन की हेडक्वार्टर है, यहां पर दोनों ब्रेन्स का हेडक्वार्टर, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस में इतनी हाईली रिफाइंड सेल्स हैं, इसमें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ, थर्मोस्टेट उसमें होता है ना, गीजर में थर्मोस्टेट होता है ना, इतना टेम्परेचर पानी का होगा, फिक्स रहेगा। तो ऐसे ही यहां का भी थर्मोस्टेट है इसमें, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 ही रहेगा, चाहे बाहर टेम्परेचर 45 हो जाए, चाहे बाहर टेम्परेचर 10 हो जाए, चाहे 5 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 0 हो जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 98.4 में 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर 37 रहेगा, बाहर टेम्परेचर 45, 46, 48 भी हो जाए, अगर मास्को में जाओ तो -10 हो जाता है ना, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर वहां पर भी 37 ही रहता है ना, थर्मोस्टेट लगा, अंदर एक घड़ी लगी हुई है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हाइपोथैलेमस में ही है वो भी, और वो हाइपोथैलेमस में बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उसमें कि हमारा सोने का समय क्या है, उस घड़ी उसमें घड़ी में टाइम है, सोने का समय कितने बजे सो जाओ, उसमें उठने का समय है इतने बजे उठ जाओ, इस बीच में ऐसे ऐसे सोएंगे तो हमारी नींद बहुत फर्स्ट क्लास होगी, हम रिफ्रेश सारा दिन फ्रेश रहेंगे, दोबारा सोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो टाइम मिस करेंगे तो आपको फिर वो नींद अच्छी गहरी नहीं आएगी, फ्रेश नहीं होंगे फिर आप। मेडिटेशन करने का समय है, सैर करने का समय है, चुप रहने का, कब तक चुप रहना चाहिए है ना, नाश्ता करने का समय है, काम करने का समय है, जो भी हमारा लौकिक काम होता है वो करने का समय है, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, मतलब हर चीज का समय है उसमें नियत समय है। उस समय वो काम करते हैं तो सीजन का, सीजन में कोई चीज होती है ना सस्ती मिलती है और लंबा समय चलती है, उससे बगैर सीजन के काम करो वही चीज लाओ तो टमाटर सीजन में 4 रुपए किलो मिलते हैं और बिना सीजन के 50 रुपए किलो मिलेंगे, और 50 रुपए किलो टमाटर की अगर आप तो सॉस बना के रखेंगे ना खराब हो जाएगी, और सीजन का टमाटर लोगे तो क्या होगा, उसकी सॉस बना के रखो पूरा साल चल जाएगी। माताओं को ज्यादा अनुभव होगा ना, नहीं अचार डालना हो तो आम के सीजन के आम लेके अचार डालो, या आलू की चिप्स बनानी है तो आलू की चिप्स सीजन में आलू सस्ता मिलता है ना, जब सीजन में आता है तो उसकी चिप्स बनाओ तो बहुत अच्छी सारा साल चलेंगी, और वैसे बिना सीजन के आलू के बनाओगे तो क्या होगा, चिप्स खराब हो जाएंगे ना। तो ये जो सीजन है, हर चीज का सीजन है, तो इसकी जैसे अंदर क्लॉक घड़ी लगी हुई, इसी में आत्मा हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उससे हार्मोन निकलते हैं, बिल्कुल हाइपोथैलेमस, यहाँ हाइपोथैलेमस है, इसमें दोनों ब्रेन में जो कुछ हो रहा है वो यहां पर आके उसका कंट्रोल रूम है दोनों ब्रेन का ना, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या है, उसमें हार्मोन निकलते हैं पूरी बॉडी को हार्मोनाइज करने के लिए, आपस में सामंजस्य स्थापन हो जाए, एक एक सेल का 80,000 बिलियन कोशिकाओं का सामंजस्य स्थापन हो जाए, तो वो जो है वहां से फिर सारी बॉडी, थायराइड कंट्रोल होगी, पेनक्रियास कंट्रोल होगा, डायबिटीज के हार्मोन है ना, एडिनल ग्लैंड, स्टीरॉयड, वहां से स्टीरॉयड निकलते हैं वो कंट्रोल होंगे, सारी बॉडी का सारा फंक्शन, खाना पचने का सिस्टम कंट्रोल होगा, वेट कंट्रोल होगा है ना, मोटे होंगे पतले होंगे है ना, खाना कितना ताकत देगा नहीं देगा, ग्रोथ होगी नहीं होगी, हीलिंग होगी नहीं होगी, वो सब यहां से कंट्रोल होगा, आपकी इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा, स्ट्रांग होगा या कमजोर होगा, वो सारा यहां से कंट्रोल होगा। तो आत्मा यहां इसके बीच में है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में, ठीक है, और वो वहां पर जो नर्व सेल्स है ना, जैसे मैंने बताया टर्बाइन, पानी गिरे ऐसे जमीन पर गिर जाए पानी ऊपर से 500 मीटर से गिरे तो बिजली बनेगी क्या, नहीं बनेगी, किंतु वहां पर वहां उस टर्बाइन के ऊपर गिरता तो बिजली बन जाती है, और घरों में रोशनी बताया ना, सबसे सब चीजें चल जाती, रोशनी भी हो जाती है, पंखे भी चलते, एसी भी चलते। ऐसे ही यहां पर जब वो ये सेल्स यहां की कोशिकाएं उस स्पिरिचुअल एनर्जी को, ज्ञान की एनर्जी को रिसीव कर लेती, और ज्ञान की एनर्जी को रिसीव करके उसको फिर डिफरेंट थॉट्स में कन्वर्ट कर देती, ठीक है, यहां पर अर्थात जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो किसमें, मेंटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेंटल एनर्जी, मानसिक एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमारे विचार भाई, हम चाहते हैं अच्छे अच्छे विचार आए, अच्छे आते ही नहीं है, बुरे विचार आ जाते हैं, पुरानी फाइल्स, ऐसी ऐसी फाइलें याद आ जाती हैं जो हमने कभी, पता नहीं कब की फाइलें खुल जाती अपने आप। तो ये कैसे होता है, तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो हमारी किसको 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 इससे पैदा, मानसिक, इससे मानसिक ऊर्जा पैदा होती है ना, और फिर उस मानसिक ऊर्जा से ये फिर शरीर चल, मानसिक ऊर्जा से कैसे चलेगा, फिर वो मानसिक ऊर्जा फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, भौतिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो कैसे होती है, मैं आपको स्पेस पे आप ले चलता हूं, ऐसे समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा ये साथ है ना, अब पहले आत्मिक ऊर्जा के ऊपर बात करते हैं, और फिर कैसे हमारा स्टोरेज है, ताकि हमारे पता लगे कि हम कैसे कैसे हमारी नई बातें इमर्ज होगी, आने वाले सत्य के सीन इमर्ज होंगी आने वाले समय में, है ना, ये ज्ञान की लाइट कैसे, हम लाइट हाउस कैसे बन जाएंगे, माइट हाउस कैसे बन जाएंगे, ठीक है, ये एक्चुअली ये चिंतन मेरा कल का है ना, कल का माना कल सुबह अमृत वेले से ना, इसके पहले नहीं था मेरे को, कल सुबह से इस पे कुछ ऐसी बात, परसों रात को मैं कहके सोया मतलब कि मुझे जयपुर वाली क्लास में जाना है तो मुझे कुछ नया चिंतन चाहिए ना। ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस में पिछले ग्रुप में भी क्लास कराई थी यहाँ पर वो कुछ और बात थी। तो इस पर बाबा से मैंने कहके सोया, बाबा मुझे फिर मैंने बाबा ने सुबह सुबह कल सुबह मुझे बहुत अच्छी बातें टच की, इस तरह की बातें टच की। मैं काफी समय सोचा करता था कि स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, मानसिक ऊर्जा में, फिर मानसिक ऊर्जा क्या कनेक्शन है, उससे हमारी कैसे बॉडी चलती है, क्लिक नहीं होती थी है ना। तो फिर उसे चिंतन करते करते कल और आज है ना, अभी तक भी है, रास्ते में आते आते भी है ना, तो जो चिंतन हुआ वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। मनन, बाबा कहते हैं मनन चिंतन मंथन है, ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ताजा मक्खन कह सकते हैं इसको, जिसे मैंने कभी डिस्कस नहीं किया आज तक किसी के सामने भी, अभी अभी तैयार हुआ है ना, है ना। तो वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो मैं बताया ना, ज्ञान है ना, ज्ञान जो है बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात ज्ञान, तो ये ज्ञान है, ज्ञान माना क्या है, ABCD, ज्ञान माना ज्ञान, बेसिकली ज्ञान का विस्तार तो बहुत बड़ा है। बाबा क्या कहता है ज्ञान के बारे में, सारे सागर को शाही बना दो, जंगल को कलम बनाओ और धरती को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान खत्म होगा क्या, नहीं खत्म होगा। किंतु सार रूप में देखें तो ज्ञान क्या है, ज्ञान माना ABCD। दुनिया में तो कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग ना, किंतु इसमें क्या मतलब है, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सब आत्माओं का पिता, एक परमपिता परमात्मा, सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, एंड डी फॉर ड्रामा। अब इसकी गहराई में चलते हैं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये जो एक एक एक, एक साउंड है, ये भी एक तरह की ना, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जैसे कल की मुरली थी ना, मम्मा का जो महावाक्य था ना, ओमकार क्या है, मैं आत्मा हूं, किसकी हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरा असली धर्म क्या है, शांति है। तो ये जैसे ये एक यहां से आत्मा इस सारे शरीर को चला रही है, आत्मा यहां है तो सब कुछ चल रहा है, हार्ट भी चल रहा है, फेफड़ों में सांस भी आ रहा है, पेट में खाना भी पच रहा है, आंखों से दिखाई भी दे रहा है, मुख बोल भी पा रहा है, कान सुन भी रहे हैं, दिमाग सोच भी पा रहा है ना। आत्मा निकल गई तो सब कुछ एकदम रुक जाता है, कैसे होता है, एकदम कैसे रुक जाता है। तो आत्मा से ये एक तरह की साउंड है, एक तरह की जैसे अल्ट्रासाउंड होती ना, अल्ट्रासाउंड भी साउंड है, एक साउंड है फ्री सुनने वाली साउंड जो हम सुन सकते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर हो जाएगी तो उसे अल्ट्रासाउंड कह देंगे, अल्ट्रा मतलब साउंड के, वह है साउंड किंतु उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उसको हम कानों से नहीं सुन सकते हैं किंतु उसको हम, वो भी साउंड है, उसको हम नापते हैं, उससे समुद्र की गहराई नापनी हो तो कैसे नापते हैं, एक आदमी एक इंची टेप लेकर नीचे जाता है समुद्र की गहराई में, जाकर नीचे बैठ जाता है, फिर ऊपर वाले को बोलता है मैं नीचे बैठ, मैं लगा दिया अभी नाप लो, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं हम क्या है, शिप में जाते हैं ना, शिप में बैठते हैं तो वहां से अल्ट्रासाउंड भेजते हैं नीचे, शिप के समुद्र के तले में जाके टकराती है फिर वापस आती है, हमें उसकी स्पीड पता है उस साउंड की ना, तो उस स्पीड से गई उतने स्पीड इतनी देर में आ गई, तो हमें पता है समुद्र की गहराई कितनी है, एग्जैक्टली हम कितने मीटर है, कितने किलोमीटर है, सारी एग्जैक्ट नाप सकते हैं। जैसे हम लोग हार्ट के ऊपर करते हैं ना अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो क्या करते हैं, यहां से हम हार्ट के अंदर साउंड भेजते हैं ना, अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, और वो उससे हमें हार्ट की, हार्ट का चैम्बर कितने साइज का है, दीवार कितनी मोटी है ना, बड़ा तो नहीं हो गया चैम्बर, वाल कैसा है ना, वाल सिकुड़ गया है, फैल गया है, लीक कर रहा है, सारा कुछ नाप सकते हैं अल्ट्रासाउंड से, नापते हैं ना, पेट में अगर देखना हो तो कोई ट्यूमर है, लीवर में गांठ है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, किडनी में पथरी है ना, तो सारी बातें पता लगती है ना अल्ट्रासाउंड। इसी तरह से जैसे ये जो एक साउंड है जो यहां से सारी कोशिकाओं पर उतर रही है, बॉडी कोशिकाओं पर जा रही है, ठीक है। मैं जैसे थे ना, एक फिल्म थी ना, मैं हूं ना, तो आत्मा यहां कहती क्या क्या भेजते साउंड, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, एक साउंड जैसे इस रूप में सारी बॉडी की सेल्स पे जा रही है, और जब तक ये साउंड जा रही है तो बॉडी की सेल्स सब ठीक काम कर रही है, जैसे साउंड जानी बंद हो गई सब सेल्स ने काम करना छोड़ देती है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आता हूं। दूसरा क्या कहती है, दूसरी साउंड क्या जा रही है, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान। जैसे किसी को हम इंट्रोडक्शन देते ना, मेरा नाम ये है और मैं यहां का जो पुलिस कमिश्नर उसका बेटा हूं, सामने वाला क्या होगा, इंप्रेस हो जाएगा, कहीं मैं मिनिस्टर का बेटा हूं तो क्या करेगा सामने वाला, अरे ये तो बड़ा आदमी है ना। अब आत्मा को, बॉडी के सेल्स को ताकत चाहिए ना काम करने के लिए। हमारी एक एक कोशिका में एक सेकंड में 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं, एक कोशिका में एक सेकंड में 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं, और टॉक्सिन भी इतने सारे बनते होंगे, रिएक्शन होंगे तो टॉक्सिन बनेंगे, और एक सेकंड में साफ भी हो जाती है। एक कोशिका में इतने रिएक्शन, और उसके बाद कितनी कोशिकाएं, 80,000 बिलियन, तो 80,000 बिलियन इंटू 1,00,000 कितनी हो गई, इतनी रिएक्शन, ये एक सेकंड हो गया, इतने में इतने रिएक्शन हो गए, इतने काम होते हैं हमारी कोशिकाओं में। कौन कर रहा है, कहां से आ रही है एनर्जी, आत्मा से जा रही है। तो ये जो है एनर्जी आत्मा, तो मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा, परम धाम में रहने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, सदा पवित्र है ना परमात्मा के संतान, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, खाली बाप का संबंध नहीं है, कौन कौन संबंध है, वो मेरी मां भी है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु माना भाई भी है, सखा माना दोस्त भी है, है ना, और साजन, मेरा साजन प्रेमी भी है, है ना, प्रेमी कहो प्रेमिका दोनों ही है वो, है ना, और सर्जन भी है, डॉक्टर फिजिशियन सर्जन जो मर्जी को, कोई तकलीफ हो आपको मन की या तन की, आप उसे शेयर कर सकते हो, आपको इलाज बता देगा। और फिर साथ में नौवा संबंध है बच्चा, बच्चा भी है, बच्चा भी चाहिए ना, तो नौ संबंध मुख्य है हमारे उनके साथ। और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा माना ये संसार एक नाटक है, ये सृष्टि पूरा एक नाटक है, इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपकी, कोई जो आपकी पत्नी बनी, वो आपकी पत्नी क्यों बनी, वही क्यों बनी, 100 किलोमीटर दूर पे शादी हुई, 100 किलोमीटर में जो दूसरी लड़की नहीं थी क्या जिससे शादी हो जाती, उससे क्यों शादी हुई, वो लड़का मेरे पास आके मेरा बेटा, वो एक बेटा बना, वो मेरा बेटा बना, दूसरा कोई आत्मा मेरा बेटा क्यों नहीं बन गई, या मेरी बेटी बनी, या माँ बाप बने, या भाई बहन बने, वो ही क्यों बने, वो जो है हमारा उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, दुख दिया हुआ है, सुख दिया हुआ है, वो उसको पूरा करने के लिए मेरे पास आए हैं, उस रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, बच्चों के रूप में, दोस्तों के रूप में, ऑफिस में बॉस के रूप में, साथियों के रूप में, नीचे नौकरों के रूप में, चपरासी के रूप में, है ना, तो उनके साथ हमारा अकाउंट है। जिस आत्मा को मैंने दुख दिया, तो वो व्यक्ति पिछले जन्म में वो आत्मा मेरे घर में मेरा बच्चा बन के मुझे आके क्या करेगी, दुख देगी और मुझे सहना पड़ेगा, नहीं, मेरा युगल बन के मुझे दुख देगी, है ना, दुख देगा या देगी, है ना, सहना पड़ेगा, सुख देना होता सुख देना, सुख देगी, किंतु हम बाबा को बोले बाबा इसको ठीक कर दो ना, ये मेरे को बहुत दुख देता है, बहुत तंग करता है, गालियां देते हैं, तंग करते हैं, मैं इतना करती हूं या इतना करता हूं तो भी कहना नहीं मानते हैं, है ना, तो भी मतलब जो है मेरे को हमेशा ही डांटते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, तो बाबा क्या करेगा, उसको मना कर देगा, मना करेगा नहीं, आप बाबा को याद करेंगे, बाबा क्या, बाबा आपके अंदर वो क्या भर देगा, सहन शक्ति भर देगा, और वो ताकि उसका अकाउंट, आपका अकाउंट भी पूरा हो जाए और आपका काम भी पूरा हो जाए, सहन शक्ति दे रही है तो उसे परखनी शक्ति दे देगा, बच्चे ये इसका स्वभाव ऐसा है, आप इस तरह से अपने आप को चेंज कर लो, है ना, तो इस तरह से ये जो है हमारे अंदर, तो इससे परमात्मा मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है इस ड्रामा का, और वो इसको डायरेक्ट कर रहा है कर्म सिद्धांत के अनुसार, एक्यूरेट डायरेक्शन कर रहा है, क्योंकि लेने के लिए आया तो सब अकाउंट क्लियर करके लेके जाएगा। जैसे एक बच्चा आपका पढ़ता है, मान लीजिए बॉम्बे में पढ़ता है, आपको पता है बच्चा बीमार हो गया, कई दिनों से कुछ स्कूल भी नहीं, कॉलेज में भी नहीं जा रहा, और उसका दिल भी नहीं लग रहा पढ़ाई में, है ना, तो क्या करते हो आप जाते हो, पहले तो उसका बीमार पड़ा है तो आप पहले इसका इलाज कराते हो, इलाज करके फिर क्या करते हो, उसको साथ में लेकर के उसको हम क्या करते हैं, उसके भाई उसके कहता पापा मेरे को इसके पैसे देने इसके पैसे देने, तो क्या करता बाप क्या करता है, उसके पास तो बच्चे के पास तो पैसे है नहीं, फिर बाप उसके हाथ में पैसे देता है, बेटा दे दे उसके पैसे, इसके 500 देने हैं, उसके 1000 देने हैं, उसके 200 देने, तो पैसे दिलवा देता है, उसके हाथ से दिलवाता है, अपने आप नहीं देता है। तो बाप भी हमको क्या करता है, किसी किसके देने हैं ना, जो शक्ति बाबा देता है और हम उसको अकाउंट चेक कर लेते हैं, और जिसके जिससे लेने वो उसको क्या करता है, उन्हें पैसे देता नहीं, तो क्या करता है, डांट मार के उसको, चल इसके पैसे दे, है ना, आप अपने हाथ में नहीं लेता है, उसको ही दिलवाता है, तो अकाउंट चुकतू करा देता है। इस तरह से अकाउंट चुकतू करा के हमें क्या करता है, अपने साथ अकाउंट चुकतू करा के साथ में ले जाता है, है ना, फिर वो कॉलेज से छुट्टी करा के अपने साथ घर ले जाता है ना, इसी तरह से बाबा करने के लिए आया। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है, किसी ने दुख दिया सुख दिया, दुख दिया उसको तो हम गाली देते हैं और सुख दिया उसके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, उससे लगाव हो जाता है, नहीं ऐसा होता, ये तो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत सेवा करता है, इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकता, इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, जिसने दुख दिया उससे टकराव हो जाता है और जिसने सुख दिया उसके ऊपर लगाव झुकाव हो जाता है, ऐसा होना चाहिए क्या? उसने वो एहसान नहीं किया, हिसाब किताब चुकतू किया है उसने, भी सुख दिया था सुख वापस दे दिया है ना, ब्याज लगा के थोड़ा सा, है ना, दुख दिया था पिछले जन्म में उससे पिछले जन्म में, ब्याज लगा के दुख वापस कर दिया, इसमें एहसान की बात है क्या? अब बैंक में मैं पैसे मुझे लोन लिया हुआ वापस दे दूं और तो हाँ ऐसा वो मुझे थैंक यू कहेगा क्या, बैंक मैनेजर थैंक यू कहेगा क्या, है थैंक यू क्यों कहेगा, ठीक काम हो गया पूरा, जाओ रहे यहाँ खड़े क्यों वापस, ऐसे वो ऊपर ऊपर से बोल देते हैं, ज्यादा देर खड़े हो गए तो कहेगा चलो भैया चलो आगे, लाइन बहुत है काम बहुत है हमको, चलो अपने आगे चलो, नहीं ऐसे करेगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं अरे मैंने इसके लिए इतना किया इतना क्या, एक बार मेरे को थैंक यू भी नहीं बोलता है ना, मेरे को ये भी नहीं बोलता है कि मैंने इसके लिए इतना सा था जब पैदा हुआ इसको इतना बड़ा कर दिया और देखो मेरे को कैसे आंख दिखाता है, बजाय के एहसान मानने के, है ना, नहीं उसको तो क्या, उसको तो वो कहता है वो बल्कि गाली देता ऊपर से, क्या किया पापा आपने, क्या किया मम्मी आपने, अकल ही नहीं है आपको तो, है ना, और देखो कितने अच्छे अच्छे बन गए, इतने अच्छे अच्छे हो गए, है ना, मेरे को तो आपने ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया, तो ये जो है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये एबीसीडी जितनी एबीसीडी ज्ञान है, मुरली देखो तो मुरली में क्या है, बाबा कैसे शुरू करता है, ओम शांति, बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, बाप याद है, बाप टीचर सतगुरु तीनों याद है, तीनों संबंध से मुझे याद करते हो, फिर क्या कहता है उसके बाद, फिर ड्रामा की बात करता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र बाबा आकर के आपको बताता है ना, सुदर्शन चक्रधारी बनाता है, चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। तो मुरली में देखो तो ये चार बातें बहुत बार बार रिवाइज होती है, नहीं होती, बाकी बीच में सेवा की बात आ जाती है ना? तो इस तरह से बाबा जो है एबीसीडी मुरली में बेसिकली क्या है, ये एबीसीडी होता है, तो एबीसीडी से पवित्रता आती है। जितना अधिक एबीसीडी हम बार बार रिवाइज करते हैं और रियलाइज करते हैं, ये जो वर्ड है ना विजुलाइज करना और इमेजिन करना, ऑटो इमेजरी करना, ये गलत शब्द है, ये बाबा के शब्द नहीं है, ये बाबा के शब्द नहीं है, ये हमारे बनाए हुए शब्द हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के वर्ड हैं। विजुलाइज क्या करते हैं, जो हम इन आंखों से देखा होता है वही दिखाई देगा ना, अब सूक्ष्म वतन इन आंखों से देख सकते हो क्या, आत्मा को इन आंखों से देख सकते हो क्या, परमधाम इन आंखों से देख सकते हो क्या, तो जो कुछ हम देखते हैं बनावटी विजुलाइज करते हैं, ऐसा है नहीं, ना सूक्ष्म वतन ऐसा है, ना परमधाम ऐसा है, ना आत्मा ऐसी है। अब कई बार हम कहते हैं किरणें ऊपर से आ रही, किरणें आती हैं क्या ऊपर से, ज्ञान की किरणें होती हैं क्या, पवित्रता की किरणें होती हैं क्या, शांति किरणें नहीं होती हैं, किरणें नहीं होती हैं, आत्मा के अंदर ये नॉलेज, ये समझ, ज्ञान माना समझ ना, समझ की किरणें होती हैं क्या, आपको मैं यहां बैठ के योग कराया उसके अंदर किरणें निकल के आपके अंदर जा रही है क्या, नहीं, समझ ना, समझ, ये समझ के मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म हूं, इन आंखों से ना दिखने वाली। कई लोग योग करते ना यूं आंखें चढ़ा के ऊपर से और ऐसे करते, बाद में कहते हैं मैं सिर दर्द हो गया, आत्मा को देखने की कोशिश करते यूं करके ऊपर चढ़ते ही जाते हैं, है ना, कई लोग आके बताते हैं है ना कि मैं आधा घंटा योग करता हूँ, शरीर इतना भारी हो जाता है, बात मत पूछो, है ना। तो ये समझ, चलते फिरते उठते बैठते समझ आ जाए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये ना ये भी आत्मा है, ये मेरा बेटा ना ये भी आत्मा है। हम क्या समझ लेते, प्रॉब्लम क्या होती है, हम घरों में क्या करते हैं, जो पति होता है ना, जो पैसा कमाता है, वो डायरेक्टर समझ लेता है घर का अपने आप को, या पत्नी होती है ना, वो डायरेक्टर समझ लेती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, तो इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैं जैसे आपको एग्जांपल से, मान लीजिए एक डीवीडी है मेरे पास ना, 30 रुपए की आती है, आपने डीवीडी खरीद ली, या वीडियो शॉप से डीवीडी ले ली, ऑडियो वीडियो शॉप है ना यहाँ पर, डीवीडी खरीद ली, अब डीवीडी आपकी हो गई, होगी नहीं, 30 रुपए में खरीदी ना, पैसा देकर खरीदी, आपकी डीवीडी हो गई, अब उसको डीवीडी प्लेयर में डालो, क्या दिखाएगी, आपकी डीवीडी आपके हिसाब से दिखाना चाहिए ना, नहीं नहीं दिखाना चाहिए, आपकी है ना, आप कहते मेरी पत्नी है तो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए ना, नहीं नहीं, मेरा पति है तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए ना। अरे भाई डीवीडी, डीवीडी जिसने बनाई है उसमें जो भरा है दिखाया वही तो दिखाएगी, वो नहीं दिखाएगी, नहीं दिखाएगी, बताओ, मेरी पत्नी, अरे ऐसे मेरा कहना नहीं मानती, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, लाइट गुल लाइट हाउस कहां बनेगा ना, बनेगा लाइट हाउस, लाइट हाउस बना ही नहीं। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है, मेरा बच्चा, अरे भाई तुमने बनाया क्या बच्चा, है ना, तो मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चले, बेअकल हो तो चलेगा ठीक है, बुद्धू हो ना अकल हो, बिल्कुल बुद्धू हो यहां बैठा दो वहीं बैठा रहेगा ठीक है ना, तो अकल वाला बच्चा पैदा क्यों किया, अपने अकल से चलाना था तो नहीं है सर। तो ये हमको बहुत गहराई समझने की, डायरेक्टर एक्चुअली हम डायरेक्टर नहीं है, हम एक्टर्स हैं, आप भी एक्टर हैं, पत्नी भी एक्टर है, बच्चे भी एक्टर हैं, माता पिता भी एक्टर हैं, दोस्त भी एक्टर हैं, आपका नौकर भी एक्टर है, और आपने जो दुख सुख दिया उसके हिसाब से सब काम होने वाला है, उसी हिसाब से वो बोलेंगे। हमारे पास हार्ट पेशेंट्स आते हैं ना, कहते डॉक्टर साहब हम हार्ट पेशेंट हूं, मरने वाला, डॉक्टर कहता है तुम्हारी इतनी आर्टरी ब्लॉक है, ये तो भी देखो हर समय मेरे जैसे बोलते रहते हैं, हर समय बोलती रहती है, ऐसे ऐसे बोलती, इसको जरा भी नहीं, मैंने कहा भाई तेरे को तो शास्त्र को सब कुछ ब्लॉक होते होते भी तो जीना ही है ना, तेरे को तो समझना है कि क्या होने वाला है। तो इस तरह समझ, गहराई समझने की आवश्यकता है ठीक है। तो इसलिए जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छा होने वाला, आप हम डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर वो है, उसने जैसे शूट किया है ड्रामा, जैसे ड्रामा शूट उसके अनुसार चलेगा, इसलिए दोषी नहीं है कोई। कह कहता है मेरे को, जब मेरे पास हार्ट पेशेंट आते हैं युगल आते हैं साथ में, तो पत्नी बीमार होती है तो इशारा, मैं कहूँ तुम्हें बीमारी क्यों हुई, कई बार चुपके से इशारा कर, इसके कारण अंदर से इशारा करती है ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। और पति बीमार होगा तो क्या कहता है, इसके कारण, इसके यूं चुपचाप ऐसे अंदर से करेगा उसके कारण थोड़ी ना हुई, वो तो अंदर आपके अंदर जो रिएक्शन हुई ना उसके प्रति, आपने रिएक्शन की ना उसके, उसके कारण बीमार हो। ये ज्ञान को, इस ज्ञान की गहराई को समझा नहीं, ये ज्ञान की गहराई है ना, इसको समझा नहीं। तो ये जब हम समझते हैं तो हमारा अंदर पवित्रता आती है, तो पवित्रता की एनर्जी पैदा होती है, मन माना शुद्ध हो गया ना, अरे भाई किसी ने दुख नहीं दिया, मैंने दुख दिया था, इसने थोड़ा ब्याज लगा के मुझे वापस किया, नहीं कोई सुख दे रहा है उस पर हम प्रभावित नहीं होंगे, नहीं नहीं ये तो मैंने सुख दिया हुआ वापस मुझे दे दिया ब्याज के साथ, तो लगाव झुकाव टकराव नहीं आएगा। तो ये पवित्रता हो, शुद्धता, न्यारा बन गए ना, अभी न्यारा और प्यारा बन गए, तब ना, तब ऊपर उठे ना थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर से कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर उठी ना, तो हम प्यार, हम पवित्र बने, पवित्रता आई, पवित्रता आई तो क्या हुआ, अभी विचार चल रहे थे ये मेरे को दुख क्यों देते हैं, मेरे को ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतना करता हूं, मैंने इतना बड़ा किया, इसको इतना समझाया, इतना पैसा लगाया, है ना, तो विचार तेज हो गए, तेज विचार हुए तो अपवित्रता आई, तेज विचारों को इससे ही अशांति पैदा होती, ज्यादा विचारों को अशांति कहते हैं, पवित्रता आई मतलब थोड़ा शुद्ध विचार कम हो गए, विचार शुद्ध रह गए, अशुद्ध विचार कम हो गए, ये ऐसा क्यों करता है ऐसा, इसकी बजाय पवित्रता से शांति आ गई, शांति माना कम विचार, जब शांति आई तो प्रेम आ गया। प्रेम कैसे आया? प्रेम माना दूसरों की केयर करना विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। जब हमारे अंदर शांति आई ना, कम विचार हुए, तो मुझे ये ध्यान आने लगा कि जैसे मैं आत्मा हूं ये भी तो आत्मा है, जैसे मैं शांति चाहता हूं इसको भी तो शांति चाहिए। तो फिर हम एक दूसरे केयर करते हैं, केयर करते हैं और उनकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए। एक माँ अपने बच्चे की क्यों केयर करती है? उसको खाना बनाएगी, सब कुछ खिलाएगी, कपड़े धोएगी, सब कुछ करेगी, फिर तो डांटती रहे हमेशा। तो बच्चे को पूछा, मेरी मम्मी तुम्हें प्यार करती है क्या? क्या बोलेगा बच्चा? नहीं नहीं मम्मी कहां की प्यार करती, मम्मी कोई प्यार व्यार नहीं करती है। और मम्मी उसको बहुत प्यार से डिग्निटी, मेरा राजा बच्चा है, उसके लिए खाना बनाती, राजा राजा बच्चा करके उसको उमंग उत्साह भरती है, उसको डिग्निटी उसको मेंटेन करती है आदर से। भले है तो अलग बच्चा है, किंतु है तो अलग आत्मा है, तो आत्मा ना अलग आत्मा है ना, उसको उसी तरह से रिस्पेक्ट से देखना है ना। तो उस हिसाब से देखना, राजा बच्चा है, राजकुमारी है मेरी बेटी, तो बेटी को देखें तो राजकुमारी की तरह देखें, राजा का बच्चा राजा की तरह देखें ना, राजकुमार की तरह देखें, मतलब उसको उस डिग्निटी से देखना। एक पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ काम करती है, सुबह शाम टोकती रहे हर समय तो क्या होगा, डांटती रहे पति को तो क्या, पति कहेगा मेरी बहुत केयर, मेरे बहुत प्यार करती है। नहीं कहेगा, मैं तो शाम को घर आने में ही डरता हूं, है ना, प्यार की फीलिंग नहीं आएगी। कि तू केयर करो, फिर डिग्निटी को मेंटेन करो कि अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूं, है ना। तो उस जब डिग्निटी को मेंटेन करते हुए रेस्पेक्ट को आदर के साथ उसकी केयर करते हैं, तो इससे प्यार की फीलिंग, इससे रूहानियत की, रूहानी प्यार की फीलिंग आती है। और रूहानी प्यार से अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आती है। एक इंद्रियों का सुख, देखने का सुख, बोलने का सुख, सुनने का सुख, खाने का सुख, और ये है हमारा अतिंद्रिय सुख, आत्मा का सुख। और उससे फिर आनंद की फीलिंग, उससे क्या होता है, ये साथ में फिर फीलिंग आती है कि मैं तो जो आत्मा हूं वो तो मरने वाली नहीं है। परमात्मा पिता सबका बाप मेरा बाप है, सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र वो मेरा बाप है, आनंद की फीलिंग है। अब इस आनंद को जब फील कर लेते हैं तो उसको हम परख लेते हैं कि यही मेरा है सब कुछ, बस यही ठीक है, बाकी सब गलत है। तो परखनी शक्ति आ गई, जिस चीज में आनंद मिलता है ना उसको हम क्या करते हैं, हमारी मेमोरीज भी कैसे बनती है बचपन 11 साल की उम्र तक, जो चीज हम देखते हैं ना घर में देखते हैं ना, इससे काम हो जाता है, उसको वो स्टोर हो जाता है, हाँ ये हमें करना पड़ेगा। कई गुस्सा करते हैं बचपन से, कई आदत होती है गुस्सा करने की, जल्दीबाजी करने की, चिंता करने की, रोके दिखाने की, क्योंकि बचपन में देखा है माता जी रोती थी तो काम सारे हो जाते थे, उन रिकॉर्ड हो गया कि हाँ रोने से सब काम हो जाते हैं। गुस्सा पिताजी गुस्सा करते सारा काम हो जाता था, तो रिकॉर्डिंग हो गई 11 साल की उम्र तक कि हाँ गुस्सा किया सब काम हो जाएंगे, गुस्से के बाद काम होता ही नहीं दुनिया में। तो इसलिए ज्ञान में 30 साल चलने के बाद गुस्सा नहीं छूटता है, रोना नहीं छूटता है, जल्दीबाजी करना छूटता नहीं है, समझ रहे, क्योंकि वो हमारे अंदर गहरा रिकॉर्ड हो गया। इसको मूल संस्कार कहते हैं, हमारे बाकी संस्कार निकल जाते हैं, मूल संस्कार निकलते नहीं। मूल माना जो 11 साल की पहले रिकॉर्ड हो गए, उसको हम बुरा नहीं मानते हैं, इतना तो जरूरी है ना अंदर। उसको हम कहें ना, जैसे घर में कोई आतंकवादी आपका नौकर नौकर बन के रहे, आपकी सेवा करता हो, तेल मालिश करता हो, पानी पिलाए, खाना खिलाए, सब कुछ बना के दे, तो आप सोचोगे क्या आतंकवादी है ये? नहीं सोचोगे आतंकवादी ना, कि तू है आतंकवादी, आपके घर में शरण लेके रह रहा है ना, और मौका देखता पैसे भी उठाता रहता है चुपचाप, आपको पता नहीं लगता सालों से काम कर रहा है ऐसा। कोई कहे ना उसको आतंकवादी है, कहेंगे ना आतंकवादी नहीं है, ये तो मेरा नौकर है, बहुत सेवा करता है। नहीं, तो हमारे अंदर भी वही सूक्ष्म सूक्ष्म संस्कार रहते हैं, इस कारण हम संपूर्ण फरिश्ता नहीं बन पाते, समझ रहे बात। तो ये जो मूल संस्कार हमारे अंदर रह जाते हैं, तो इससे जो है हमारे अंदर, जैसे हम क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाए संस्कार। फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता माना जिसका 100% माइंड कॉन्शियस हो। अभी हमारा मनुष्य का, इंसानों का 90% मन कैसा है? सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस माना हमारे कंट्रोल में नहीं है, अर्थात तरह से जन्म जो हमने पाप कर्म किए ना वो सब अंदर रिकॉर्ड है। तो हम चाहते हैं कि हम चावे उठे, हम मुरली सुने, हम बाबा ने जो कहा उसी अनुसार चले, मीठा बोले, है ना, किंतु क्या होता है, कॉन्शियस माइंड तो संकल्प करता है, दृढ़ता से भी करता है कि मुझे करना ही है, किंतु वह क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, अंदर जो भरा पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है, चिंता भरी पड़ी है, टेंशन भरी पड़ी है, वो करने नहीं देता है। तो ये विकर्मों का बोझा 90%, जैसे एक पानी का बड़ा टुकड़ा होता है ना, जमीन पानी के अंदर पड़ा हो, 10% ऊपर है पानी के ऊपर, 90% पानी के नीचे है, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, और समुद्र में लहर ऐसे जा रही है, पानी का फ्लो ऐसे है, ऊपर हवा का फ्लो ऐसे है, तो कहां जाएगा टुकड़ा, कहां जाएगा, 90% की तरफ जाएगा ना, 10% की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारी हालत ये होती है, हम 10% माइंड कॉन्शियस होने के कारण से हम लोग जो है अपने आप को 90% अनकॉन्शियस, हमारी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है। जब बाबा कहते हैं ना कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो, जहां चाहो वहां मन को लगा दो, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट नहीं बनते, मतलब फरिश्ता नहीं बनते। जितना जितना हम योग करते जाएंगे, जितना जितना अब माइंड हाउस की बात बात करें, तो जितना जितना हम योग करते जाएंगे तो ये हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड खत्म होता जाएगा, उतना उतना खत्म होगा, जितना खत्म होगा उतना उतना क्या होगा हमारा, पहले 10% वाला हम साफ करेंगे योग के द्वारा, ठीक है, उसकी सफाई करेंगे, उसमें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड बहुत गड़बड़ है, कॉन्शियस माइंड में बहुत गड़बड़ है, उसको कैसे शुद्ध करेंगे, मैं आपको नियम मर्यादाओं की बात करूं, आई थिंक हमें कितना कितनी देर में कर सकता हूं, 15 मिनट और ले सकता हूं, अच्छा चलो, आपका योग शुरू हुआ ना क्लास है इसके बाद, योग है ना, हाँ। तो मैं उस पर जितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा फिर क्लीन होगा ना, पहले कॉन्शियस माइंड क्लीन होगा, वो कुछ के नियम और मर्यादाएं क्या है वो देखेंगे, और फिर सबकॉन्शियस, जब ये क्लीन हो जाएगा कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस का नंबर आएगा। कॉन्शियस माइंड क्लीन होने के बाद ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस तो क्लीन होना शुरू हो जाता है, सबकॉन्शियस क्लीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सबकॉन्शियस, और फिर जो है हमारा कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे, जैसे वो फिर बर्फ पिघलती जाएगी ऊपर वाली, धूप पड़ेगी ना ऊपर से तो ऊपर की बर्फ पिघलेगी, तो नीचे की जो बर्फ है वो ऊपर आएगी, है ना, और ऊपर आएगी, फिर ऊपर की पिघल जाएगी, फिर और ऊपर आएगी, इतना बड़ा टुकड़ा था, अभी पिघल ऊपर जाता जाएगा और बर्फ पिघल के इन क्या होगा, पूरा बर्फ का टुकड़ा पिघल के पानी बन जाएगा, नहीं नहीं ऐसा, सेम चीज हमारे साथ होती है, जब धूप ज्ञान योग रूपी धूप पड़ती है ना, सातों गुणों की बम्बार्डमेंट होती है ना आत्मा पे परमात्मा सागर से, है ना, तो धीरे धीरे वो कॉन्शियस माइंड पहले क्लीन होता है, फिर सबकॉन्शियस ऊपर आ जाता है, फिर वो पिघल जाता है मतलब साफ हो जाता है, फिर धीरे धीरे अनकॉन्शियस थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जाएगा और अनकॉन्शियस निकलता जाएगा, निकलते वो भी पिघल खत्म, पिघलना माना भसम होता जाएगा, और हमारा माइंड एक दिन क्या होगा 100% कॉन्शियस हो जाएगा। अर्थात मेरे मन में क्या विचार आया, कौन सी फाइल खुलेगी, क्या मेरा भावना होगी, क्या एटीट्यूड होगा, क्या विचार चलेगा, वो मेरे कंट्रोल में होगा, जहां चाहो जितना चाहो उसमें हम टिक सकेंगे, तो वो जो है फिर इससे होगा योग की शक्ति से, है ना। तो अभी हम इस पे चलते हैं कि अब जैसे ये तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अब परख लिया हमने, दुनिया को देख लिया, आनंद आ गया, इसी में आनंद आता है, बाकी आनंद कैसा है, बाकी सुख कैसा है, अल्प काल का सुख क्या किसके समान है, कागविष्ठा के समान है। आपको पता है कागविष्ठा क्या होती है, पता है कागविष्ठा, कौवे की उल्टी है ना, कौवा उल्टी करता है, देखिए कभी कौवे की उल्टी, जिसने देखी हाथ उठाओ, कैसी होती है कौवे की उल्टी, कैसी होती है पता नहीं है, कौवा तो रोज उल्टी करता है ना। अब मैं देखो, मैं आपको इसलिए बताता हूं कि मैं जब MBBS कर रहा था ना, हम मौलानाजाद में MBBS किया मैंने दिल्ली से, तो हमारे सामने दरियागंज है ना, दरियागंज में वहां पर जो ना एक बड़ा बहुत बड़ा जगह थी, जहां पर इसको दाना डालते थे, चिड़िया को कौवों को दाना डालते थे, हम लोग सुबह सुबह हॉस्टल में रहते थे, वहां से निकल के थोड़ा सा राजघाट की तरफ जाते थे घूमने, तो रास्ते में पड़ता था, तो हमने देखा एक दिन ऐसे देखा कि वहां पर कौवे जहां थे ना, जब कौवे खाना खाते थे वहां पर, दाना खाते, वहां पर एक मोती पड़े हुए हैं बहुत सारे, 3-4 मोती जैसे मुझे दिखाई दिए, तो मोती देखे तो मैं, मोती यहाँ बीच में, दानों के बीच में मोती कैसे पड़े, तो फिर मैंने जो है क्या किया, तो मैंने कहा उठा के देखूं ये मोती कैसा मोती है ना, तो मैंने कहा फिर मेरे सामने क्या किया, कौवे ने क्या किया, वो मोती जैसे चमक रहा था बिल्कुल, है ना, वो उसने कौवे ने मतलब वो मोती ऐसे वो निकाला, मतलब ना मुंह से, उल्टी की, वो उल्टी थी उसकी, उसने निकाला। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसको, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज होगी, कभी सोचा तो नहीं था, तो ये उंगली तो मेरी काम की है, ये भी काम की, ये भी काम की, ये भी काम। तो मैंने क्या किया, इस उंगली से, इसको बेकार उंगली है वाली ना, इससे उसको छुआ। मैंने कहा मूर्ति को जरा टच करके देखिए कैसे, कैसा मूर्ति है ना। और मुझे आज इस बात को 31-32 साल हो गए, 33 साल हो गए बल्कि ना, 33 साल हो गए, आज भी मैं उस उंगली को नाक के पास नहीं लेके आता हूँ। उसमें छुआ तो सही, और उसमें इतनी बदबू थी, इतनी बदबू थी, बात मत पूछो। मैं जाके फिर घूमने नहीं गया, हॉस्टल में वापस गया, हाथ धोता रहा आधा घंटा पौना घंटा, हाथ धोता रहा, साबुन लगाओ धो, फिर नाक में सूंघू, बदबू ही बदबू, फिर देखू बदबू ही बदबू। आज भी सूंघने से मैं डरता हूँ नाक के पास लाने से ना। वो मूर्ति को छूने, मूर्ति को उठाने चला था ना। ऐसे ही ये संबंध के अलग काल का सुख है ना, संबंध का सुख, शादी कर लो सुख मिलेगा, सुख मिला ना, 30-30 साल हो गए ना, सुख मिल रहा है ना सभी को, 40 साल हो गए ना, कितना सुख मिला ना, बच्चा हो जाएगा सुख मिलेगा बहुत है ना, कितना सुख मिल रहा है, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए है ना, बहुत सुख मिल रहा है ना, चलो आइसक्रीम खा लो बहुत सुख मिलेगा है ना, गुलाब जामुन खा लो बहुत सुख मिलेगा, पेट में गैस बन गई, अब एसिड बढ़ गया बहुत है ना, इस शुगर बढ़ गई है ना, थोड़ी देर खाया सुख कितना मिला, जीव का सुख एक मिनट मिला, उसके बाद 15 दिन डॉक्टर के इंजेक्शन लगवाते रहे, गोली खाते रहे, नहीं नहीं नहीं। तो जितने भी सुख है ना, ये जो सो कॉल्ड सुख है, इंद्रियों के सुख, ये तो अलग काल के हैं, काल विष्ठा समान, ये कौवे की उल्टी के समान है, देखने में मोती जैसे लगते हैं और बाहर से अंदर से जहरीले है ना। एक एक कर्म, एक एक कर्म, आज से 40 साल पहले कर उल्टा कर्म किया था कोई, आज भी उसको याद करके बुद्धि खराब हो जाती है, नहीं होती, सामने आ जाए व्यक्ति तो दिमाग खराब हो जाता है ना, याद आ जाए, सामने ना भी आए, बात किसी और के साथ ऐसी बात हुई, हमें देख ले तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। तो यही पाप कर्म कहलाते हैं, यही अंदर रिकॉर्ड है, जो कुछ हमने देखा है बचपन से लेके, जो कुछ सुना है, जो कुछ बोला है, जो कुछ खाया है, जो कुछ किया है हाथों पैरों से, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो गया, और वो फाइलें जैसे ही हम वापस उसको देखते हैं तो खुल जाती है, वापस खुल जाती है। तो ये हमारे पाप कर्म अंदर रिकॉर्ड है, और ये जन्म के जो हमारे कहते हैं 63 जन्म के पाप कर्म, वो भी हमारे अंदर कैसे रिकॉर्ड है, ये जो रिश्तेदार आसपास है ना हमारे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, ऑफिस में काम करने वाले, दुकानों पे पड़ोसी, ग्राहक है ना, ये सब के सब हमारे रिश्तेदार पूरे, ये सब पिछले जन्मों में, हमारे कई जन्मों में हमारे रिश्तेदार रहे हैं। हम मधुबनी में हम 1000 लोग रहते हैं, 1000-1500 लोग रहते हैं, हम भी पिछले जन्मों के सब रिश्तेदार हैं है ना, पूरा परिवार है ना मधुबनी, आप लोग पूरे जयपुर वाले जैसे हैं, ये भी आपस में परिवार है ना, सप्तमी में आएगा ना। तो इसके इसमें जाने से पहले, वापस घर जाने से पहले, सबके आपस में अकाउंट है, चुपचू करने पड़ेंगे, जो 84-83 जन्म जो हुए पहले, इसमें 63 जन्म तो पाप कर्म के वश हमने आपस में दूसरे साथ गलत काम किए हुए हैं। एक पहले 83वां जन्म खत्म होगा, 83 जन्म में भी बुढ़ापा आएगा, जवानी, बुढ़ापा, जवानी और बचपन, बुढ़ापे में पाप कम होते हैं, जवानी में पाप ज्यादा होते हैं, और फिर बचपन में कम होते हैं, तो ये सीक्वेंस चलती रहती है ना। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस चलती रहती है। हम इसमें क्या होता है, ज्ञान योग में भी कैसे होता है, जब बाबा के शुरू में बहुत अच्छा योग लगता है, बाबा से उड़ रहे हैं, बाबा से बैठे हैं, तुरंत पहुंच गए, जैसे छोटे बच्चे को ना माँ बाप क्या करते हैं, हर समय गोदी में रखते हैं, बच्चा 2-3 साल का बड़ा हो गया तो फिर क्या करते हैं, बच्चा गोदी में आके पागल है क्या, चल उठ चल अपने आप चल अपना काम कर है ना, करते हैं अलाउ करते हैं बार बार गोदी में आके बैठ जाए, बड़ा हो गया चल अपना काम कर है ना। तो वो फिर क्या होता है, फिर हमारे 83वां जन्म का बचपन, बुढ़ापा, पहले बुढ़ापे में योग अच्छा लगता है, जवानी में फिर उल्टी दशा में जा रहे हैं ना, वही सामने रिश्तेदार आ जाते हैं, वही सब चीजें उनको देखते हुए फिर भी हम अपनी स्थिति बना के रखें, एबीसीडी का ध्यान रखते रखते, और फिर करते करते तो योग लगना, अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली कर रहे तो भी अच्छा नहीं योग लग रहा है, खुशी नहीं आ रही है ना, फिर हम बचपन आता है फिर योग लगना शुरू हो जाता है, फिर 83 जन्म पूरा हो गया, 82 जन्म शुरू हो गया, 82 का बुढ़ापा योग अच्छा लग रहा है, जवानी आई फिर योग लगना काम शुरू हो गया, फिर 82 का वो आया क्या कहते हैं बचपन आया, फिर योग लगना अच्छा लगना, फिर 81 चालू हो गया, और बीच में क्या गलती कर ली, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, तो वापस 83 पे पहुंच गए, ठीक है, फिर 83 शुरू करो कहानी, ऐसे करते हमारे 35 पे पहुंच गए, एक गलती कर ली वापस 83 पे पहुंच गए, ठीक है, फिर चालू करो, जैसे सांप सीढ़ी का खेल नहीं होता है, वो सारी मेमोरीज खुल जाती है। एक्चुअली फाइलें जो है ना हमारी, हमारी जो फाइलें हैं वो मेमोरीज के हिसाब से जमा है। या मैं ये बात, मैंने जो आज मैंने जो अमृत वेला कल में जो बात चिंतन था, ये इसी बात पे चला कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जब आत्मा को टच करती है, आत्मा में से निकलती है ना बाहर, तो उससे फिर हमारे अंदर विचारों की मेमोरीज की फाइल है, उनसे कनेक्शन है मानसिक ऊर्जा का ना, तो उस वो फाइलें हमारी वो खुलने लगती है। अब जो 15 से ऊपर की जो फाइलें, बल्कि 8 से ऊपर की फाइलें ना, वो विकारों के वश की फाइल है, काम क्रोध लोमो अहंकार आलस अलबेलापन शक अनुमान चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष की फाइलें, अलग अलग व्यक्ति के साथ हमारा जो हिसाब किताब बना हुआ है वो फाइलें हैं, और 8 से नीचे वाली फाइलें हैं पॉजिटिव फाइलें हैं। उसमें से 8 की फाइल शांति की फाइल है, 7 और 8 की फाइल शांति की फाइल है, 5 और 6 की प्यार की फाइल है, रूहानियत जहां पर जीवन प्यार की रूहानियत वाला प्यार, और फिर 3 और 4 की फाइल खुशी वाली फाइल है, 2 की फाइल आनंद वाली फाइल है, तो 1 और 2 की फाइल जो है जब हमारी वो स्थिति हो जाएगी 1-2 की, तो सत्यों की सिंधी चालू हो जाएंगी, बैठे बैठे यहां से दिखाई देंगी, और जब 3 और 4 की फाइल तो हमें त्रेतायु की सिंधी चालू हो जाएंगी। तो इस तरह से जो 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 फाइल खुलती जाती है, अभी हम क्या है, अभी हमारे अंदर रिकॉर्डिंग वो फाइलें इतनी ज्यादा हैं, ये फाइलें मर्ज हैं, सत्युग त्रेता वाली फाइलें मर्ज हैं, संगम युग की फाइलें भी, मतलब जो फरिश्ता युग फरिश्ता टाइम की भी फाइलें हैं हमारे अंदर, वो फाइलें भी मर्ज हैं। तो जो जो हम योग करते जाएंगे, जितना शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है, तो जितना जितना हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते, रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे इस बात को, ABCD को, चलते फिरते उठते बैठते, उतना ये रोशनी बढ़ती जाएगी आत्मा में, ज्ञान की रोशनी बढ़ती जाएगी, है ना, और उतना रोशनी बढ़ती जाएगी उतना क्या होता जाएगा, हमारी जो परमात्मा से हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, 15 की बजाय 10 होगी, फिर 8 होगी, फिर 8 शांति, ऐसी शांति फील होती रहेगी हमेशा, विचार कम चलेंगे, और आपको इजी फील होगा, बिजी फील नहीं करेंगे। बिजी हम क्यों फील करते हैं, क्योंकि विचार तेज चल रहे होते, 25-30 चिंता के विचार, 25-30-35, तो एक मिनट में 35 विचार चल रहे हैं, तो कोई पूछेगा भाई कैसे, खाली बैठा है कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, बहुत बिजी हूं, आज ये काम करने ऐसा कर सकते हो, नहीं नहीं आज मैं बहुत बिजी हूं, कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, बिजी हूं, क्यों बिजी है, क्योंकि विचार तेज चल रहे हैं। और किसी बाबा के बच्चे से पूछो, बहन जी से पूछो, किससे पूछो, हाँ आ जाना आधे घंटे में आ जाना, मिलके जाओ, टोली लेके जाना, वो बिजी नहीं है क्या, आपसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि मन में विचार कम है ना, 8 विचार चल रहे हैं, 6 चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, आपके 20 चल रहे हैं, उनके 4 चल रहे हैं, दादियों के पास जो 2 विचार चल रहे हैं ना, एक मिनट बाबा और मैं बस, तीसरा कुछ है ही नहीं, खाली है, दादी को पूछो दादी क्या खाली हूं ना, कुछ काम ही नहीं है, 12-12 घंटा सेवा करते, 14-14 घंटा तो भी खाली खाली क्यों है, वो इजी है। तो जो जो जितना जितना आप विचार कम होते जाते बाबा की ABCD से, फाइलें वो फाइलें मर्ज होती जाती हैं, सही माने में विक्रम विनाश नहीं होते हैं, वो फाइलें मर्ज हो जाती हैं। विक्रम विनाश का मतलब वो फाइलें अब ऐसी मर्ज हो गई कि वो अब खुलती नहीं है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अभी तो क्या फ्रीक्वेंसी हो रही है, अभी तो कभी 15 हो रही है, कभी 8 हो रही है, कभी फिर 20 हो रही है, कभी अभी अभी योग कैसे होता है, अभी हम चले ऐसे चले और फिर हमारी यूं योग ऊपर गए, लगा आप तो फरिश्ता स्थिति के नजदीक पहुंच गए, थोड़ी देर में नीचे दम से नीचे पहुंच गए, ठीक है, अभी अरे फरिश्ता क्या है, तो आदमी भी नहीं रहे, है ना, अच्छा फिर थोड़ी देर में देखो तो फिर ऊपर पहुंच गए, है ना, योग लगाया ऊपर पहुंच गए, है ना, और अच्छा बहुत अच्छा फरिश्ता लग रहा है, उड़ रहे हैं बाबा की गोद में जाके बैठ के, बाबा प्यार कर रहा है, थोड़ी देर में देखो तो फिर नीचे दम से नीचे पहुंच गए, है ना, है ना, तो यूं चल रहे हैं ना, यूं। अब कोई कहे नहीं हम जा तो ऊपर ही रहे हैं, अगर एवरेज देखो तो ऊपर ही जा रहे हैं, आप माउंट आबू से नीचे ऊपर आते बीच में खाई है, कहीं कहीं ऊपर है कहीं नीचे, ये थोड़ा नीचे को जा रहे हैं, नहीं कहीं नीचे जा रहे कहीं ऊपर, किंतु ओवरऑल तो ऊपर ही आ रहे हैं धरती से ना, ऐसे ही हम जा तो ऊपर ही रहे हैं, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर जा रहे हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जब 21वां जन्म पहुंच जाएगा तो फिर हम स्टेबल हो जाएंगे, विकर्म नहीं रहेंगे हमारे, क्योंकि विकर्म के विषय सब हमारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, फिर हमारी एकरस स्थिति आ जाएगी। तो कभी घबराना नहीं चाहिए कि देख करके नहीं, पर इसके लिए दिनचर्या अपनी एक्यूरेट रखें। ये बाबा ने हमें चार नियम और चार परहेज दिए, चार मर्यादाएं दी है। जैसे चार गोली खा लेंगे बोला है, रोज चार गोली खाओ और चार परहेज करो, दवाई ठीक काम करेगी। ये गोली तब काम करेगी जब परहेज ठीक रखोगे। तो पहला परहेज क्या है? अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला। एक्चुअली अमृत वेले ही विक्रम विनाश हो सकते हैं, अमृत वेले ही विक्रम विनाश। क्यों? क्योंकि अमृत वेले जब हम उठते हैं तो हमारे हमारे फ्रीक्वेंसी कम होती है, विचार कम चल रहे होते हैं, क्योंकि हम उठते ही चार की फ्रीक्वेंसी पे हैं। गहरी नींद माना ही डेल्टा रिदम माना, विचार ही तीन चार चल रहे हैं आपके। और अगर बाबा से कनेक्शन लेना हो तो हमें जीरो शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा, हमारे कितने दो होना चाहिए ना। अब वहां पर बाबा को उठते गुड मॉर्निंग की और गुड मॉर्निंग करते चार पे मान लो बैठ गए आप, तो कितनी देर लगेगी चार से दो पे पहुंचने में? कम समय लगेगा ना, तुरंत ही पहुंच जाओगे। गुड मॉर्निंग इसलिए उठते ही मक्खन लगा दो, है ना, बाबा गुड मॉर्निंग, है ना। और कुछ याद मत करो, बिस्तर में उठते ही बोल दो गुड मॉर्निंग, बिस्तर में आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग बोल दो, उठ के बैठो बैठने के पहले ही बोल दो, है ना। एकदम बाबा की कोई मुरली का पॉइंट, उठते ही बेड में बैठे बैठे बेड में ही लाइट जलाई और बस, हाँ बाबा की मुरली का, बाबा ने क्या कहा, कल क्या कहा था, वरदान क्या था, उठते ही बिना ब्रश करे भी मुंह देख, बस उसके बाद फिर उसके बाद उठे, उसी चिंतन में उठ जाओ और फिर ब्रश करके मुंह हाथ धो के क्रीम लगा के बैठ जाओ। क्रीम बड़े आदमी से के पास जाते मिलने तो क्रीम व्रीम लगा के जाते हैं ना, ऐसे नहीं, कई लोग ऐसे उठे बैठे मुंह वैसे बैठ गए, इसे अमृत वाला नहीं कहते। आनंद की स्थिति का अनुभव होना चाहिए, तो तुरंत अलर्ट होकर बैठ गए, सीधे कमर करके बैठना चाहिए अमृत वेला में ना, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा, सीधी कमर होनी चाहिए ना, सीधी गर्दन सीधी कमर होनी चाहिए। और फिर आराम से बहुत प्यार और खुशी से याद करो, क्योंकि प्यार और खुशी के बाद आनंद है। प्यार माना छह, खुशी माना चार और आनंद माना दो, है ना। तो प्यार खुशी में आ गए तो दो के नजदीक पहुंच गए, नहीं पहुंच गए तो उससे अपने आप को याद करो। फिर बाबा के दो माना बाबा की गोद में पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंचे, उनसे दो चार बात हुई, बाबा से बातचीत की, अपने मन की बात शेयर की और परम धाम में पहुंच गए। अब परम धाम माना एक जैसे होता है, ये सूक्ष्म वतन क्या है, एक से तीन संकल्प की दुनिया है, ABC, है ना। डी ड्रामा इस संसार में ही है, ड्रामा वहां नहीं है, सूक्ष्म वतन में ड्रामा नहीं है। जैसे ही बोलते हैं ड्रामा में, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, आप सीधे सूक्ष्म वतन पे पहुंच जाते हो। जैसे इसको रियलाइज कर लेते हो ना, अंदर से रिवाइज और रियलाइज कर लेते हो तो एकदम सूक्ष्म वतन पे पहुंच जाते हो। सूक्ष्म वतन में कौन है? ब्रह्मा बाबा बैठे, बाप दादा बैठे, शिव बाबा ब्रह्मा कंबाइंड बैठे, बाबा की गोद में पहुंचे दो, बाबा हाथ रखता है प्यार करता है, बच्चे हाथ फिराता है, संदेश था ना अभी बाबा का, हाथ फिराता है, बच्चे प्यार करता है, बच्चे तुम मेरे हो, तुम्हें तो ये बनना है, तुम तो ऐसे हो, महिमा करता है बच्चों की ना। तो जैसे ये करता है ना, तो हमारा क्या होता है, एक बस बाबा रह जाता है, ये भी भूल जाता है मैं हूं, सूक्ष्म शरीर मतलब खत्म, मन खत्म, संकल्प खत्म, एक ही रह गया बाबा। अब बाबा माना एक किया ना, बाबा माना परम धाम में पहुंच गए, और वहां बाबा की लंबे इतना लीन हो जाते हैं, जैसे देह का भान, सब चीज का भान खत्म, संकल्प खत्म, संकल्प खत्म माना परम धाम में पहुंच गए। संकल्प का मतलब वहां ये नहीं परम धाम, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान आ रहा है मेरे अंदर, पवित्रता का सागर है, पवित्रता, ये संकल्प भी चला तो हम परम धाम में नहीं है, हम सूक्ष्म वतन में, बल्कि सूक्ष्म वतन में यहीं पर ही है, ठीक है। वो अनुभूति का संसार है, सूक्ष्म वतन माना अनुभूति का संसार है, इशारों की भाषा है, है ना, संकल्पों की भाषा है, और परम धाम माना जहां संकल्प भी नहीं है, वहां सिर्फ एक थॉटलेस स्टेज, जैसे थॉटलेस एकदम, उसमें क्या है, हमारे जो पुरानी मेमोरीज है ना वो डिलीट, जैसे कोमा से आदमी बाहर निकलता है ना, क्या पूछता है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, तुम कौन हो, तो फिर जो है पुरानी मेमोरीज, हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज डिलीट हो जाती है। और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब काम विकार की मेमोरी, क्रोध की मेमोरी, लोभ मोह अहंकार की मेमोरीज, वो जैसे डिलीट होती है, डिलीट आज की, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या रिजल्ट, कैसे पता लगेगा आज विक्रम विनाश हो गया, कल जिस व्यक्ति को देखे गुस्सा आता था, आज उसको देखे गुस्सा नहीं आएगा, व्यक्ति वो बच्चा भी हो सकता है आपका, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, आज उसको देखे गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि अच्छी बात याद आएगी, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, मन में कोई गलत भाव नहीं आएगा, अच्छा भाव आएगा, तो बताओ वो विक्रम विनाश हो गया। और एक बार करने से नहीं, फिर रोज करो, रोज करते 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 जो सारा दिन इस एबीसीडी को रियलाइज और रिवाइज और रियलाइज करता है, रिवाइज माना मनन और रियलाइज माना तीन बातें हैं, चिंतन, मंथन और सिमरण, है ना। रियलाइज माना अनुभव, रियलाइज माना उसको रियल को अपने अंदर अडॉप्ट करना, जो रियल है उसको अडॉप्ट कर। रियल क्या है, मैं कौन हूं, किसका हूं, मेरा उससे क्या संबंध है और संसार रूपी नाटक क्या है, इसको रियल को अपने अंदर अनुभव करो, है ना, तो फिर हमारे जीवन का पार्ट बनता जाता है। तो जो सारा दिन करता है, ये नहीं अमृत वाला बैठ गया योग लगेगा ही नहीं, 40-45 मिनट से 40 मिनट तो योग लगाते लगाते बीत जाएगा, फिर ऊपर मुश्किल से 1 सेकंड पहुंचेंगे और टाइम पूरा घंटी बज जाएगी, गीत बजना शुरू हो जाएगा, नीचे आ जाओ वापस, है ना। दूध आपने रखा स्टोव पर, गैस पे रखा, उतार लिया, गर्म हो गया, क्या कीटाणु मर गए क्या, नहीं मरे, रखो ना 10-15 मिनट तो रखो ना कम से कम, तब तो दूध उबलेगा, तब तो कीटाणु मरेंगे, तो कम से कम 15-20 मिनट 40-45 मिनट 40 मिनट 10-20 मिनट तो सूक्ष्मतम में रहो, 20 मिनट ऊपर परम धाम में जाओ, तब तो विकार विनाश होंगे, उसके लिए साधन स्थिति चाहिए, ठीक है। तो अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, ठीक है। पर अमृत वेला करने के पहले उसका अमृत वेला अच्छा होगा जो सोने के पहले बाबा को चिट्ठी लिखेगा, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देगा, हिसाब किताब देगा कि बच्चे बाबा आज ये हुआ, आपने ये कहा था मुरली में, मैं तो नहीं कर पाया, आपने कहा था बच्चे मीठा बोलो, मैं तो बाबा उसको कड़वा बोल दिया, आपने कहा था बच्चे ऐसे करना, मैं तो नहीं कर पाया बाबा, है ना। तो जो जो बात जहां जहां गलती हुई एक एक बात लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, साइन करो, बाबा की याद में बैठो, 000 पे फैक्स कर दो, हॉटलाइन फैक्स है 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0 और जो बीत गया मल्टीप्लाई बाय 0, एकदम बाबा के पास पहुंच गया, फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, चार्ट भरो, बाबा की याद में सो जाओ। तो कम से कम 10-15 मिनट ये स्थिति में रह करके तब सोता है ना जो व्यक्ति, 9:30 सोना है, 10 बजे तो नींद में चले जाना चाहिए, जब तो गहरी नींद आएगी ना तो उसके द्वारा फिर सुबह सुबह फ्रेश होकर उठोगे, नहीं तो उठने के बाद नींद आएगी, तो वो अमृत वेला, तब उसका अमृत वेला पावरफुल होगा। फिर अमृत वेला करके फिर मुरली के पॉइंट रिवाइज कर लो पिछले दिन के मुरली के, और फिर बाबा की याद में नहाओ, बाबा की याद में नहा करके और फिर मुरली सुनने जाओ, फिर वॉकिंग करो 45 मिनट, आज का तो है ना मौसम अच्छा, बाबा की याद में बातें करते हुए नहीं, हमारी मेडिटेटिव वॉक होनी चाहिए, सूक्ष्मतन में वॉक होनी चाहिए बाबा के साथ, है ना, और फिर बाबा की मुरली सुनो, बाबा की गोद में बैठ के सेंटर पे जाके, संघ और वातावरण का बड़ा महत्व है, संघ और वातावरण है तो मुरली अंदर जाती है, मुरली जाती दो पर अंदर जाती है, है ना, शिव बाबा की मुरली की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 और 2 तो अंदर जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी 15 हो तो अंदर जाएगी नहीं। आप देखो मुरली सुन के बाहर आते हो, पूछ रहे कोई क्या कहा बाबा ने, पता नहीं कुछ कहा तो था, फिर बोलता है ना कोई, हाँ 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 यही कहा था, नहीं तो अंदर नहीं जाती है, रिकॉर्ड नहीं होती अंदर, रिकॉर्डिंग उसी फ्रीक्वेंसी पर रह करके बाबा की गोद में बैठ के सुनो तो मुरली सुनती, फिर सारा दिन उस मुरली को हर घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट, 2-2 लाइन लिख लो कागज पे, जेब में रखो, हम हमेशा जेब में रखते हैं अपने मुरली, है ना, जैसे ही मौका मिलता है, जैसे लव लेटर होता है ना, लव लेटर कैसे देखते हैं, जैसे मौका देखा ये देखा छुपा लिया, है ना, छुपा लिया, एक लाइन देखी छुपा ली, कोई देख नहीं ले, है ना, तो नहीं ऐसे यूं देखते हैं फिर छुपा लेते हैं, कोई देखे नहीं छुपा ले, तुरंत छुपा लेते हैं ना, तो ऐसा लव लेटर ये, इसको एक एक लाइन, 2-2 लाइन वरदान की, स्लोगन की, मुरली की, मीठे बच्चे की, अंदर कोई लाइन अंडरलाइन कर लो, अच्छी लाइन है तो, जो आपको लगती है आपके जीवन में जरूरी है उसकी, तो उसको फिर बार बार रिवाइज कर लो, कम से कम 21 जना में सुख पाना है तो 21 बार तो रिवाइज होनी चाहिए, नहीं कितनी बार रिवाइज होना चाहिए, 21 बार, ज्यादा बार नहीं, अब मुश्किल नहीं है करना, बहुत सहज है ना, तब इसका मनन करो, चिंतन मनना रिवाइज करो, चिंतन माना उसके, उसको अपने साथ लगा के देखो, बाबा ये कहता है मेरे अंदर तो नहीं है, फिर मंथन माना उसको बाबा से डिस्कस करो, मथो, फिर मक्खन निकले, फिर मक्खन को बार बार, मक्खन को गर्म करना पड़ता है, तब घी बनता है उसका, है ना, सिमरन, फिर सिमरन माना गर्म करो बार बार, ये मक्खन निकला उसको फिर बार, जैसे मेरा सुबह आज कल मक्खन निकला ना, मैं वो क्लास में कवर नहीं कर पा रहा हूं, जब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटल फिर दूसरी बातों में चला गया, किस तरह से वो मन में कैसे कन्वर्ट होता है, कि तू जो मक्खन मेरा निकला वो तो आज सारा दिन यही चल रहा है, सुबह से पेशेंट भी देखा हॉस्पिटल में, मीटिंग भी की, किंतु चल रहा है अंदर वही है ना, वही वही बार बार सिमरन चल रहा है, घी बन रहा है उसका, सारी उम्र बाकी उम्र काम आएगा। घी खराब नहीं होता है ना, मक्खन खराब हो जाता है, तो सिमरन उसका फिर स्मृति स्वरूप बन जाओ, फिर घी रोज खाओ है ना, तब जाके ताकत आएगी। ठीक है, इस तरह से जब करेंगे ना तो क्या हुआ, अमृत वेला मुरली, सारा दिन मनन चिंतन मंथन, और फिर सोने के पहले पोता मेल। तो ये चार चीजें हर ब्राह्मण के लिए जरूरी है, ये चार दवाई है हमारी। और कब योग लगेगा, चार परहेज करो, पवित्रता, जितनी अधिक पवित्रता बढ़ती जाएगी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक दी, अर्थात ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी अपवित्रता है, ये ऐसा क्यों कर रही है, अरे ड्रामा के अंदर है ना, भगवान को पसंद तुम क्यों क्वेश्चन करते हो, मतलब वैध संकल्प करना भी अपवित्रता है। तो जितनी पवित्रता डिग्री बढ़ी उतनी योग ज्यादा लगेगा। अन्न की शुद्धि, पवित्रता में सबसे बड़ी टेलीविजन है, टेलीविजन देखते तो पवित्र नहीं है बुद्धि, ठीक है, अखबार टेलीविजन ज्यादा ये देखते हो ना करते हो तो इससे बुद्धि अपवित्र है। पवित्र माना सिर्फ श्रीमत पे चलना, ना काम कांश ना क्रोध कांश ना लोभ का ना मोह का ना अहंकार का ना ये बाल बच्चों का, आलस भी है तो अपवित्रता है। मतलब पवित्रता की डेफिनेशन बहुत गहरी है, ना मनमत ना परमत, 100% श्रीमत है ना, जो बाबा ने किया फॉलो फादर, फॉलो फादर मदर फादर, फॉलो और कुछ नहीं है ना, तो वो पवित्रता है। शुद्ध अन्न सत्संग, शुद्ध अन्न माना जो बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, बाजार के होट कोल्ड ड्रिंक पीना, आइसक्रीम खाना, ये क्या खाते हैं ना, वो बिस्किट खाना, ये खाना वो खाना, ये तो मशीन का बना हुआ है, और मशीन मशीन के सामने खड़ा कौन हुआ है, मशीन के ऑटोमेटिक थोड़ी ना बनाती, उसमें आटा डालोगे तब तो कुछ बनाएगी, डालने वाला कौन, बनाने वाला कौन, निकालने पैकेट बनाने वाला कौन, बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें मत जाओ। बाबा की याद में सिंपल रोटी सब्जी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, है ना, आसक्ति में मत खाओ। और तीसरी सत्संग, सत्संग माना एक सत्य, एक बाबा है और एक मुरली है, बाबा और मुरली का संग करो, तीसरा कुछ संग करने की आवश्यकता नहीं। चौथा दैवी गुणों की धारणा, मीठा बोलो सबसे, धैर्यता रखो, जल्दीबाजी मत करो, और क्या करो, संतुष्ट रहो और दृढ़ता के साथ, जो बाबा ने हमें नियम बना के दिए उस पर दृढ़ता से चलो। ठीक है, तो जितना जितना ये चार नियम प्रेज करते जाओगे क्या होते जाएगा, योग लगता जाएगा, अमृत वेला होगा, मुरली अंदर बैठती जाएगी, मनन चिंतन मंथन अच्छा होगा, पोता मेल क्लियर होगा, दिल सच्ची होती जाएगी, साहब राजी होता जाएगा, साफ दिल होती जाएगी और मजबूत होते जाएंगे। ओके, तो फिर क्या बन जाएंगे हम, लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाएंगे, फिर हमारी लाइट दूर दूर तक जाएगी और माइट शक्तियां दूर दूर तक फैलेंगी। ओम शांति।
भाई कैसे करें, धन्यवाद डॉक्टर साहब का। सतीश भाई, अच्छा एक मिनट सब सुन के ही चलो, अभी हम नीचे शांति स्तंभ में चलेंगे एकदम, क्योंकि वहां ऑलरेडी मधुबन वाले योग में बैठे हुए हैं, आप सब शांति स्तंभ में जाके साइलेंस में बैठेंगे। मधुबन वाले तो 8 बजे तक योग करते हैं, आप भी अगर 8 बजे तक करेंगे तो फिर 9 बजे की क्लास में कैसे आएंगे, तो 7:30 का रिकॉर्ड बजेगा, उसके बाद धीरे धीरे उठ के आप जाएंगे, भोजन करेंगे और ठीक 9:45 यहाँ आ जाएंगे, फिर अपना राजू भाई का क्लास होगा। तो मैं पुनः ज्यादा समय नहीं लेती, धन्यवाद भी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ हमारी दिल की दुआएं शुभ भावनाएं। सतीश भाई आपका बहुत 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 थैंक्स, आप सीधा हॉस्पिटल से, मेरे को मालूम है नीचे आप हॉस्पिटल को सारा देखते हैं ट्रॉमा में, मेरे को कहा बेंजी मैं हॉस्पिटल से सीधा आऊंगा, आप देखो डॉक्टर साहब आप लोग बिजी रहते हो या डॉक्टर साहब बिजी रहते हैं, राजकुमार जी आप भी डॉक्टर हो, ये भी डॉक्टर, ये हमारा एक डॉक्टर है, हफ्ते में एक ही बार क्लास करते हैं, जरा मिल लेना रोज, देखो कितनी, ये तो क्लासेस कराते हैं। तो चलो, हाँ तो चलो अभी मैं समझती हूँ नीचे ही चले, टाइम क्योंकि हो गया, फिर आप ताकि शांति स्तंभ का आनंद ले सके, ठीक है, हमारे पास समय कम है। ओम शांति, आराम से सब जाओ बिना आवाज के।